ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, निट्ठव्यर्थकम् वीरमणमियूणपत्तसौवट्ठम्, अणुभागस्य विहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है। निट्ठ है क्या नट्ठ है? नट्ठ सही लगता है, परंतु अन्यत्र भी नट्ठ आया है। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए। 79 यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ अपनी अभी बात नाना जीवों की अपेक्षा काल की चल रही है, और उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग का लगातार काल हम मार्गणाओं में देख रहे हैं। तो यहाँ 79 पृष्ठ पर शुरू करते हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ इस पर्याय में आया हुआ जीव लिया, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग है वो अंतर्मुहूर्त के बाद अनुत्कृष्ट हो जाता है। तो उत्कृष्ट के साथ इनमें जन्म लिया और एक समय में अनुत्कृष्ट हुआ, उसका अंतर्मुहूर्त पहले बीत गया, ऐसा जीव लिया। मरण की अपेक्षा भी ले सकते हैं, क्योंकि मरण के पहले अनुत्कृष्ट था और मरण के समय में एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ और फिर अन्य भव में चला गया, यानी वो उसके मार्गणा बदल गई। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है, क्योंकि अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा ही होते ही है। मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये भी उत्कृष्ट के साथ इनमें पैदा हुए जीव लेना है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। कोई जीव उसमें जघन्य में जघन्य रहे तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, तथा उत्कृष्ट काल पल्य का असंख्यातवा भाग है। पल्य का असंख्यातवा भाग कहा, सदाकाल नहीं कहा, क्योंकि ये तो सांतर मार्गणा है। एक जीव आता है उत्कृष्ट के साथ, अनुत्कृष्ट की बात चल रही ना, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। दोनों का ही उत्कृष्ट काल लिया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जीव आता रहे, उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो, अंतर्मूर्त तक रहे उसका। तो ऐसे असंख्यात जीव आते हैं और एक एक के लिए अंतर्मूर्त, तो वो पल्ले का असंख्यातवा भाग काल घटित होता है। एक के बाद कोई ना कोई जीव उत्कृष्ट के साथ आता है और अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट के योग्य अंतर्मूर्त, पूरा उसकी लाइफ टाइम नहीं लेना उसमें, और अनुत्कृष्ट तो होता ही है अंतर्मूर्त। हाँ, पल्ले के असंख्यात भाग, ये कथन तो दोनों के लिए समान है। मनुष्य पर्याप्तों में वो जो काल बताया है उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो संख्यात जीव है। एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो संख्यात जीवों के लिए संख्यात वो भी अंतर्मूर्त ही होगा, ये बात बताना चाहते। परंतु अपर्याप्त मनुष्य असंख्यात है, इसलिए वहां पल्ले का असंख्यात भाग घटित होता है। इसी प्रकार वैक्रिक मिश्र काय योगियों में जानना चाहिए
ये उत्कृष्ट विभक्ति का तो उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्ति का
कि पर्याप्तों में उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल बताए पर्याप्त जीवन। और मैत्रिक मिश्र का योगियों में जो है पल्ले का असंख्यात भाग उत्कृष्ट काल, वहां भी जघन्य काल एक समय होगा, वहां भी उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग होगा, क्योंकि उसमें वैक्रिक मिश्र काय योग में तो असंख्या जीव होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक आए हैं, ऐसा जीव लेना। विशेषार्थ, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जघन्य काल एक समय नारकियों के समान घटित कर लेना चाहिए, अन्य मार्गणा से इसमें आए हैं, तथा इन दोनों मार्गणा वालों का प्रमाण संख्यात होता है, ये मुख्य बात है। इसलिए इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, क्योंकि यहाँ संख्यात अंतर्मूर्तों का योग अंतर्मूर्त ही होता है। यह दोनों मार्ग निरंतर मार्गणाएं हैं, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सर्वदा कहा है। यह तो संभव है कि जिनके उत्कृष्ट में एक समय काल शेष है, ऐसे जीव मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न हो, पर उत्कृष्ट अनुभाग का घात होने पर मनुष्य अपर्याप्तकों का जो काल शेष रहता है उस काल में उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग नियम से पाया जाता है, यानी जो उत्कृष्ट में रहने का काल है अंतर्मूर्त, वो लब्धि अपर्याप्तक जो उसका काल है ना, मनुष्य अपर्याप्तकों का क्षुद्र भव का, उससे छोटा है, तो उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होने पर भी कुछ काल तक वो अनुत्कृष्ट में रहेंगे ही। इसलिए मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये जघन्य में क्षुद्र भव में से उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त बाद करना, उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त लेना, एक समय नहीं लेना, तो वो माइनस करेंगे। देखो, मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट किसके होता है, तो जो संगी पंचेंद्रिय जो है कौन, मनुष्य या तिर्यंच, उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया उसने और उसको उत्कृष्ट का वो पहला समय है, तो अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट रहेगा, परंतु ऐसा जीव मर कर अभी मनुष्य अपर्याप्तों में जन्म लिया है तो उसका उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक रहेगा, अंतर्मूर्त के बाद वो नियम से अनुत्कृष्ट हो जाएगा, परंतु अभी उसकी लाइफ बाकी है, अपर्याप्त की लाइफ उस अंतर्मूर्त से बड़ा अंतर्मूर्त है। हाँ, अपर्याप्त मनुष्यों की आयु जो है वो भी अंतर्मूर्त है, परंतु वो जो अंतर्मूर्त है वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले जो अंतर्मूर्त है उससे बड़ा काल है, तो उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होने पर मिनिमम उतना अंतर्मूर्त तो अनुत्कृष्ट में रहेगा और मैक्सिमम अनुत्कृष्ट में कितना रहेगा, तो पूरी लाइफ टाइम तक रहेगा, अनुत्कृष्ट के साथ ही जो आया है लगातार भी वो मनुष्य अपर्याप्त भोग करते रहेंगे। नाना जीव, यहाँ नाना जीवन की बात है ना, पहले मैंने बात बताई थी एक जीव की अपेक्षा, अब यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा देखना है। तो एक जीव के लिए जघन्य काल अंतर्मूर्त, अधिक काल भी अंतर्मूर्त, ऐसे लगातार एक एक का अगर हम अंतर्मूर्त गिनेंगे तो असंख्यात जीव वहां एक के बाद एक आएंगे, तो वो पल्ले का असंख्यात भाग घटित होगा। देखो, इसलिए मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय, जघन्य की बात है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये दोनों ही जघन्य काल घटित करके दिखाए। यहाँ इतना अवश्य समझना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्त अंतर्मूर्त काल तक रहे और बाद में उनका अभाव हो जाए इस अपेक्षा यह अंतर्मूर्त काल कहा है, ये जो जघन्य काल कहा है, जैसे एक जीव या अनेक जीव एक साथ उसमें जन्म लिए और बाद में उनका अभाव हो जाए, उस अपेक्षा से ये बात बताइए जघन्य के लिए। तथा नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य अपर्याप्त को उनका उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा। वैक्रेक मिश्र का योगी यह भी सांतर मार्गणा है, इसलिए इसमें उक्त सब काल घटित हो जाने से उसमें भी एक समय वाला घटित होगा, अंतर्मूर्त वाला घटित होगा, पल्ले के असंख्यात भाग वाला भी घटित होगा, होगा ना लगातार उसका काल पल्ले का अंतर नहीं, काल अंतर में हम देखते हैं बारह मुहूर्त, क्या यहाँ काल की बात चल रही है। जो वैक्रिक मिश्र का काल है वही इनका भी काल कहेंगे, इसलिए उसकी प्ररूपना मनुष्य पर्याप्तकों के समान की है। जय बहन ख्याल में आई बात, कुछ एक जीव अंतर्मूर्त तक रहेगा ही, उसका अंतर्मूर्त पूरा होने के पहले पहले और दूसरा आया, या पूरा होने पर भी एक समय में आया, तो ऐसा अगर हम लगातार गिनेंगे तो असंख्यात अंतर्मूर्त हो जाए तो उसका योग जो है टोटल पल्ले के असंख्यात विभाग आता है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वदा पाई जाती है, इसका अर्थ वहां उत्कृष्ट वाले भी हमेशा होंगे और अनुत्कृष्ट, वो उनकी अपने अपने जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है उसको लेना है, यहाँ ओघ वाला उत्कृष्ट यहाँ नहीं हो सकता। इसी प्रकार अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग है। नाना जीवों की अपेक्षा घटित करना है ना, तो एक एक काल, एक एक का अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाए और अन्य अन्य जीव उसमें आते रहे तो उसको लिया। देखो इसको विशेषात पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। आनत आदि में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का निरंतर सद्भाव बना रहता है, क्योंकि यहाँ यह संभव है कि किसी के उत्कृष्ट अनुभाग का घात न हो और यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग में वृद्धि भी संभव नहीं है। वृद्धि तो होती नहीं, जो सम्यक तो संबंधी है, शुक्ल लेशा वाले हैं, उनका तो अनुभाग में वृद्धि तो होती ही नहीं है। घात तो संभव है, परंतु घात में अनुत्कृष्ट का तो अनुत्कृष्ट ही होगा ना, तो हो सकता है कि उत्कृष्ट का भी घात न हो, जो उत्कृष्ट के साथ आए हैं तो उसका घात न हो, ये संभव है, इसलिए उनको सर्वदा काल कहा। यहाँ अभिनिबोधि ज्ञानी आदि अन्य जो मार्गणाएं बतलाई है उनमें इसी प्रकार काल घटित कर लेना चाहिए, मात्र अभिनिबोधि ज्ञानी आदि कुछ मार्गणाएं इसकी अपवाद है। बात यह है इन मार्गणाओं में यथासंभव उत्कृष्ट अनुभाग वाले मिथ्या दृष्टि भी आते हैं, हमने देखा था ना, ये तो कांडक घात किए बिना सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, तो उनको यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वाले हैं। अतः इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। यदि देखो इसका स्वामित्व निकालना, परंतु यह नाना जीव है ना, हम एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर होगा। 20 के पहले था ना, 18-20 कुछ, जगन्नाथ ने हमको उत्कृष्ट चाहिए था। तेरा 14 कुछ होगा, 14 पेज पर है 20 नंबर का पॉइंट। हाँ, अभिनिबोधिक ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा 20 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 14। देखो वहां देखते हैं, ज्ञान की अपेक्षा मिला ना। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी में मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभव किसके होता है? 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले जिस मिथ्या दृष्टि ने तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभव के साथ, तत्प्रायोग्य ने वैदिक सम्यक्त्व के लिए जो कोई वहां मैक्सिमम हो सकता है, तत्प्रायोग्य वैदिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है, जब तक वह उस अनुभाग का घात नहीं करता है तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। अब ये एक जीव की अपेक्षा कितने काल तक वो अनुभाग विभक्ति रहती है उसको देखेंगे, तो हम नाना जीवों का हमको कैलकुलेट करेंगे हम उत्कृष्ट का काल। ये पेज नंबर 27 पर है। देखो यहाँ 36 नंबर के पॉइंट में अभिनिबोधिक ज्ञानी में बताया, सेकंड लाइन में मिला, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। मैंने एक जीव की अपेक्षा एक समय और अंतर्मूर्त लिया। अब इसी के द्वारा यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते। देखो अभी आते अपने मूल पृष्ठ पर, अस्सी पेज पर जो हम देख रहे थे, देखो तीसरी लाइन, यहाँ अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि अन्य वर्गणा है उनमें इसी प्रकार काल घटित करना चाहिए, मात्र अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि कुछ मार्गणाएं इसके अपवाद है। बात यह है कि इन मार्गणाओं में यथासंभव उत्कृष्ट अनुभाग वाले मिथ्या दृष्टि भी आते हैं। तो उनका काल हमने कितना देखा, जगत ने एक समय और उत्कृष्ट अनुभाग रहेगा तो अंतर्मुत, अतः इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय, कि एक समय के लिए आए एक या अधिक जीव और फिर दूसरे समय में नहीं आए, यानी उसका घटित उसका अनुभाग घट गया फिर दूसरा कोई जीव नहीं आया उसमें, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग, क्योंकि एक जीव के लिए अंतर्मूर्त। तो वैदिक समय दृष्टि है वो तो असंख्यात है, उसको प्राप्त करने वाले भी वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार आए, तो उसका पल्ले का असंख्यात भाग घटित होता है। आगे पढ़ेंगे ना, ये बात ख्याल में आई। यदि जिनके उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय काल शेष है ऐसे मिथ्या दृष्टि इन मार्गणाओं में आते हैं और दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग वाले मिथ्या दृष्टि नहीं आते, तो इन अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का एक समय काल उपलब्ध होता है, और जिनके उत्कृष्ट अनुभाग का काल अंतर्मूर्त है ऐसे जीव निरंतर आते रहते हैं, निरंतर की बात है। तो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। यह देखकर अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि सात मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। ये सात मार्गणा अभी हमने देखी थी 79 पेज पर। ये तीन तो अभिनिबोधिक शुद्ध और अवधि ज्ञानी वैसे अवधि दर्शन वाले, ये तो हो गए चार। शुक्ल लेशा वाले लिए सम्यक दृष्टि और वैदिक सम्यक दृष्टि। जो वैदिक सम्यक में भी अपेक्षा तो सभी में यही बात रखती है। अब आगे पढ़ते हैं,
ये शुक्ल लेशा में भी यही प्रमाण से घटित होगी।
हाँ, शुक्ल लेशा में भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो काल बताया है, तो ग्रेवेक में भी उत्कृष्ट अनुभाग
उसका तो काल लंबा नहीं हो जाएगा उत्कृष्ट अनुभाग के साथ।
उत्कृष्ट तो अंतर्मूर्त से ज्यादा रहता ही नहीं।
शुक्ल लेशा में यथा योग्य जो उत्कृष्ट अनुभाग है वहाँ तक, वहाँ जब क्रिया नहीं होगी तो उत्कृष्ट ही रहेगा।
क्रिया नहीं, मगर क्रिया के बिना उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट होने के लिए कोई क्रिया नहीं लगती है।
अच्छा, अंतर्मूर्त के पश्चात
अंतर्मूर्त के पश्चात वो अनुत्कृष्ट हो जाता है, यही अभी हमने देखा। पंचेंद्रिय वो न रह गया दो को लगाना। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त को में मौन कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, असंख्यातवे भाग है। यह भी वही बात लेना, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त उत्कृष्ट काल है, तो अनेक असंख्यात जीवों की अपेक्षा पल्य का असंख्यात होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है, क्योंकि उत्कृष्ट कभी कभी होते हैं अनुत्कृष्ट, बाकी तो सभी पंचेंद्रियों को अनुत्कृष्ट तो होगा ही।
में एक समय नहीं होगा ना,
ये बताए ना जघन्य एक समय। पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात विभाग है।
जो पंचेंद्रिय में जो उत्कृष्ट करेगा वो पंचेंद्रिय में ही रहेगा, तो उसका अंतर्मूर्त तो होगा ही, एक समय कैसे घटित होगा? क्योंकि कोई अन्य पर्याय से आता है तो उसका एक समय घटित होता है।
हाँ, पर ऐसा है ना, उत्कृष्ट वाले होते ही ऐसा नहीं, उसमें बीच बीच में अंतर पड़ता है। ऐसा होता है कि एक भी जीव उत्कृष्ट वाला न हो।
अच्छा, और मरण में एक समय और, मरण की अपेक्षा एक समय हो जाता है।
मरण की अपेक्षा भी हो सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला करने वाला कभी न हो, ऐसी बातें बनती हैं।
हाँ।
अब किसी ने, मगर अनुत्कृष्ट का एक समय घटित नहीं होगा,
नहीं होगा।
अनुत्कृष्ट का एक समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुत्कृष्ट तो सर्वदा है,
सर्वदा है।
एक जीव की अपेक्षा घटित हो सकता था, एक जीव की अपेक्षा अनुत्कृष्ट भी एक समय घटित होता। क्यों? एक जीव ने उत्कृष्ट किया था, उसने अनुत्कृष्ट किया और मर गया, पर उस समय बाकी सारे अनुत्कृष्ट वाले हैं ना वहां पर। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय घटित नहीं होगा, इसलिए कहा अनुत्कृष्ट तो हमेशा ही है, सर्वदा है। इसी प्रकार त्रस पर्याप्त और चक्षु दर्शन वाले के जानना चाहिए, उसमें भी यही कथन घटित होगा। विशेषार्थ, यद्यपि पंचेंद्रिय जीव ही मोहनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं, परंतु कदाचित ऐसा संभव है कि कोई पंचेंद्रिय जीव मुनि का उत्कृष्ट अनुभाग बंद न करे। वो बंद जरा स्पष्ट करना है। और जिनके मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग के काल में एक समय शेष हो, ऐसे जीव ही शेष रहे। अतः यहाँ पंचेंद्रिय द्विक में मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय है। एक साथ एक समय वाला एक जीव आए या ज्यादा आए?
ज्यादा है तो भी एक समय के,
फिर भी एक समय के बाद वो अनुत्कृष्ट हो जाता है।
पर्याय बदल गए, पंचेंद्रिय से अन्य पर्याय में चले गए।
आप मरण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जन्म की बात है ना। ऐसे जीव शेष रहे की बात है। उत्कृष्ट अनुभाग के काल में एक समय शेष हो, ऐसे ही जीव शेष रहे। हाँ, इसलिए वो एक समय घटित होता है जघन्य का। उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय, वो तो आप जन्म के समय भी ले सकते हैं, मरण के समय भी ले सकते हैं, जिनका एक समय बाकी है। क्योंकि बाद में मार्गणा बदल जाएंगी उनकी। तथा इनमें अनुत्कृष्ट इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यह तो जन्म की बात नहीं लेना है, किसी ने उत्कृष्ट किया, एक जीव का अंतर्मूर्त तक रहा, तो एक के बाद निरंतर कोई ना कोई उत्कृष्ट करता रहे तो असंख्यात अंतर्मूर्त हो जाएंगे, उसको कहेंगे पल्ले का असंख्यात का भाग। इसी प्रकार त्रस त्रस पर्याप्त चक्षुदर्शनी जीवों में उक्त काल घटित कर लेना चाहिए। इन सब मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। आहारक काय योगियों में मौनी कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि आहारक काय योग में आया है। देखो, जो उत्कृष्ट के साथ आता है वो उत्कृष्ट ही रहता है, अनुत्कृष्ट के साथ आता है वो अनुत्कृष्ट ही रहता है, उसमें आहारक कायोग के काल में कुछ परिवर्तन नहीं होता। आहारक कायोग में आया है और एक समय में मरण हुआ तो जघन्य एक समय घटित होगा, और मरण नहीं होता तो आहारक कायोग का काल तो अंतर्मूर्त है, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का। इसी प्रकार अपगत वेदी ओ कषाई, यहाँ भी एक समय मरण की अपेक्षा होगा। सूक्ष्म सांप्राय संयत यथाख्यात संयतों में तो करना, स्पष्ट हुआ है वहां पर है, पर जानना चाहिए। आहारक मिश्र का योगियों में मौनीय कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक जीव तो अंतर्मूर्त तो उसमें रहेगा ही, उसमें मरण नहीं है, और लगातार जीव आते रहे एक के बाद एक, तो भी संख्यात जीव आएंगे, इसलिए उसको भी अंतर्मूर्त ही कहेंगे। अचक्षु दर्शन वालों में मौनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग है। वो चक्षु दर्शन वालों में भी जो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है बंद करने वाले, तो एक जीव बंद करेगा तो उसको अधिक से अधिक काल कितना रहेगा, अंतर्मूर्त तक रहेगा एक जीव की अपेक्षा। नाना जीव भी करेंगे तो मिनिमम अंतर्मूर्त तो रहेंगे ही, और चक्षु दर्शनी जीव तो हमेशा है, और उसमें अगर नाना जीव करते हैं जघन्य काल के, जघन्य में जघन्य काल, तो अंतर्मूर्त रहेंगे, और एक के बाद निरंतर करते रहे तो पल्ले के असंख्याते भाग। अनुत्कृष्ट का काल सर्वदा है। इसी प्रकार भव्य अभव्य और मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। उत्कृष्ट बांधने वाले भव्य भी और अभव्य भी है। विशेषार्थ आहार का योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से इस योग वाले जीवों में मोहनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। अपगत वेदी आदि अन्य मार्गणाओं में अपने अपने स्वामित्व को ध्यान में रखकर, स्वामित्व ने उनका अपना उत्कृष्ट जो कोई है उसको ख्याल में रखकर, इसी प्रकार उक्त काल घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार इन्हें मरण की अपेक्षा एक समय और एक के बाद आएंगे तो जीव संख्यात है, इसलिए अंतर्मूर्त। आहारक मिश्र का योग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इस योग वाले जीवों में मोहनीय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। अचक्षु दर्शन वालों में मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहने का कारण यह है, यह मार्गणा बराबर बनी रहती है। बराबर बनी रहती है उसका अर्थ है मरण नहीं होता, फिर भी है तो सांतर मार्गणा। देखो सॉरी 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 मैं आहारक मिश्र की बात कर रही हूं। मैं आहारक मिश्र की बात कर रही थी और यहाँ अचक्षु दर्शन वालों में, तो ये तो निरंतर मार्गना है। अन्य मार्गनाओं के समान यह बदलती नहीं, शेष कथन सुगम है। अन्य मार्गनाओं के समान बदलती नहीं, जैसे योग है वो बदलता रहता है, पंचेंद्रिय से जो एकेंद्रिय में जाते हैं या त्रस में से स्थावर में जाते हैं, परंतु ये मार्गना त्रस हो स्थावर है, पंचेंद्रिय हो एकेंद्रिय है, सबके तो अचक्षु दर्शन, जब तक मोहिनी की सत्ता है अचक्षु दर्शन सबके होता ही है। उपशम सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उपशम सम्यक तो है तो उसके उत्कृष्ट तो प्रथम उपशम में होगा, जो उत्कृष्ट अनुभाग के उसने जघन्य घात किया, कम घात करके अधिक से अधिक रहा उसका, ऐसा जीव लिया तो अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही एक जीव अंतर्मूर्त, और ये अनेक जीव एक साथ भी आए हैं तो जघन्य काल उसका अंतर्मूर्त होगा, और उपशम सम्यक्त्व का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त है ही, नाना जीवन की अपेक्षा भी जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक बार उपशम सम्यक्त्व प्रकट होता है तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, एक समय में कोई वहां मरण ही नहीं होता है और ना ही उपशम सम्यक्त्व छूटकर कोई मिथ्यात्व होता है, एक समय में कुछ नहीं होता है वहां, अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग, क्यों एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई उत्पन्न होता रहेगा तो पल्ले का असंख्यात भाग अंतर पड़ेगा, तो हमने 24 दिन रात का देखा था, यहाँ काल की बात चल रही है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए, उसका भी मिनिमम काल अंतर्मूर्त, और लगातार कोई ना कोई जीव आते रहे तो पल्ले के असंख्यात विभाग। संसाधन सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि सासाधन सम्यक्त्व का गुणस्थान का ही जघन्य काल एक समय है, और बीच में वो भी सांतर मार्गणा है, तो ऐसा हो सकता है कोई भी जीव सासाधन में नहीं हो, पर एक या अनेक जीव आए सासाधन में एक समय तक रहे फिर अंतर पड़ गया, इसलिए एक समय घटित होता है, दोनों का ही, उत्कृष्ट का भी और अनुत्कृष्ट का भी, एक समय वो जघन्य है और उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात विभाग, क्यों एक जीव अधिक से अधिक 6 आवली तक रहता है, 6 आवली ने अंतर्मूर्त हुआ उसका, और अधिक से अधिक जीव ये असंख्यात आएंगे लगातार निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो वो पल्ले का असंख्यात विभाग होगा। अनाहारियों में कब होगा उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट का बंद करके जो विग्रह गति में आया है, विग्रह वाला कारमाण का योग वाला, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि विग्रह गति का एक समय है, उसके साथ उत्कृष्ट के साथ आना चाहिए, विग्रह गति में तो जीव निरंतर है परंतु उत्कृष्ट का ही निरंतर नहीं पाया जाता, उत्कृष्ट कभी कभी पाया जाता है, सबको सब जगह नहीं पाया जाता, एक या अधिक जीव उत्कृष्ट के साथ विग्रह गति के एक समय के लिए आए और फिर वो पहुंच गए जहां जाना है, अनाहारक से आहारक हो गए, हाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यातवा भाग है, आवली का असंख्यातवा भाग क्यों, क्योंकि एक समय एक 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 करके आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण जीव आते हैं, यदि अंतर्मूर्त होता तो पल्ले का असंख्यात भाग कहते, परंतु अनाहारिकों का समय एक है या दो है, इसलिए यहाँ आवली का असंख्यात भाग होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति सर्वदा रहती है, क्योंकि कारमाण का योग सर्वदा है, अनाहारी सर्वदा है, और उसमें अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा ही होंगे, इसी प्रकार कारमण का योग में जानना चाहिए। विशेषार्थ, नाना जीवों की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। अभी हमने देखा नहीं, इसको घटित किया था। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टियों में भी घटित कर लेना चाहिए, यानी उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यातवा भाग। नाना जीवों की अपेक्षा सासाधन सम्यक्त्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। दूसरे और तीसरे गुणस्थान में ये डिफरेंस है। दूसरा गुणस्थान तो एक समय वाला भी हो सकता है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। अनाहारक और कार्मणिका योगियों में उत्कृष्ट अनुभाग वाले कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक ही होते हैं। कारण कि निरंतर यदि असंख्यात अनाहारक जीव भी उत्कृष्ट अनुभाग वाले हो तो उस सब काल का योग आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। तथा अनाहारक सर्वदा पाए जाते हैं, अतः इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सर्वदा कहा। इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ। ये उत्कृष्ट का नाना जीवों की अपेक्षा लगातार काल। अब हम जघन्य का देखेंगे। ओघ में जघन्य किसके होता है? शपक सूक्ष्म सांप्राय। तो ऐसा हो सकता है एक ही जीव ने वो जघन्य में है तो एक समय घटित होगा, और लगातार कोई ना कोई उसको करेंगे तो कितने समय उन तक संख्यात समय हो गया। संख्यात समय आठ कब कहेंगे? छह महीने का गैप हो तो आठ समय हो गए, उसकी बात नहीं यहाँ पर।
अच्छा,
अब जघन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ से और आदेश से। ओघ से मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अभी घटित है ना, दसवें गुणस्थान के अंत समय में होना चाहिए कोई ना कोई जीव। तो हो सकता है एक समय के लिए है फिर गैप पड़ गई, और फिर लगातार कोई ना कोई आते तो संख्यात जीव आएंगे एक के बाद एक। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है। वो दसवां गुणस्थान छोड़ो तो बाकी सारे जो नीचे के गुणस्थान है तो ये सर्वदा काल है। इसी प्रकार अब जहां जहां दसवां गुणस्थान भी घटित होता है उसको पहले लेंगे। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुसक वेदी। अभी वेदी जो लिया है तो उनका अपने वेद का उदय का अंतिम समय लेना है। क्रोधी मानी मायावी लोभी इनका भी अपना अपना अंतिम समय लेना है। आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, संयत, इनमें भी ये दसवां गुणस्थान लेना है। आभिनिबोधि ज्ञानी आदि में संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, भव्य, समय दृष्टि, शायिक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, संगी और आहारकों में जानना चाहिए। अभी हम जघन्य देख रहे हैं, पहले जो हमने लिस्ट पढ़ी थी वो उत्कृष्ट वाली थी, अब यहाँ जघन्य की बात है। इनमें दसवें गुणस्थान संभव है जहाँ जहाँ, उसको लेना है। हाँ, वेदक समय दृष्टि को कृतकृत्य वेदक वाला लेना है, जघन्य वाला।
वेदक में तो अंतर्मूर्त हो जाएगा ना
उत्कृष्ट। हाँ, अंतर्मूर्त होगा वेदक समय तो, परंतु करने वाले जीव कौन है? मनुष्य। तो लगातार करेंगे तो भी संख्या थी होगी। हमने देखे ना, छह महीने आठ समय में 608 जीव करते हैं शायिक करने वाले, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त, तो संख्यात जीवों के कितने
हो गए?
अंतर्मूर्त ही होगा। यहाँ तो ऊपर संख्या समय लिया है, हाँ अभी देखेंगे। हाँ इतनी विशेषता है वेदक सम्यक दृष्टियों में, जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से अंतर मोड़ते हैं, क्योंकि कृतकृत्य वेदक का काल अंतर मोड़ते हैं। विशेषार्थ, यह संभव है कि क्षपक श्रेणी पर नाना जीव एक साथ चढ़े और दूसरे समय में अंतर पड़ जाए, और यह भी संभव है कि संख्यात समय तक निरंतर जीव क्षपक श्रेणी पर आरोहण करे। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। यह सब देखकर यहाँ ओग से जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है, तथा जघन्य अनुभाग वालों का काल सर्वदा है, क्योंकि मोहिनी की सत्ता वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं। मनुष्यत्रिक आदि में यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें ओग के समान काल कहा। मनुष्यत्रिक में किसको लेना? हाँ, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, अपर्याप्तों को नहीं लेना। उनमें ये जघन्य नहीं घटित होगा, उनमें तो एकेंद्रीय में से आए हुए कोई घटित करेंगे। मात्र वेदक समय दृष्टियों में दो बार उपशम श्रेणी से उतरे हुए कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि के जघन्य अनुभाग होता है, उसमें भी ये कंडीशन, इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। ये हमने 6 महीने के अंतर से 8 समय भी ले लिया है, ज्यादा भी समय हो सकते हैं, अंतर मत रखो। फिर भी यहाँ तो जघन्य के साथ करने वाले सभी जो क्षायिक होने जा रहे हैं, वो दो बार उपशम श्रेणी कहाँ चढ़ के उतरे? तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हुए और क्षायिक करने वाले, ऐसे जीव तो गिने चुने हो गए।
तो यहाँ पे वर्ष पृथक तो का अंतर पड़ सकता
है, वो अंतर देख ही नहीं रहे हम लगातार काल देख रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ और उसमें भी वो अंतर घटित क्यों करना है? क्योंकि एक बार जघन्य हो गया उनका, तो नीचे रहेंगे तो जगह नहीं होगा, उल्लू बढ़ने वाला ही नहीं है। देखो इसलिए ये कृतकृत्य वेदक के देखे, इसलिए इनमें ने वेदक समय दृष्टियों में जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। ये ओग की बात ख्याल में आई? अब आदेश से नारकियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। जघन्य किसके होता है?
असंगी
में से आए हो, तो एक या अधिक जीव आए एक समय के लिए, फिर बीच में नहीं आए, अंतर तो पड़ सकता है। तो जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्य का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक जीव आया है जघन्य के साथ, जब तक बढ़ाकर नहीं बांधता है तो उसका अंतर्मूर्त घटित हो सकता है। तो एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो असंख्यात जीवों के लिए पल्ले का असंख्यात भाग
नहीं। यहाँ पे तो खाली विग्रह गति में ही अंतर, अरे जघन्य होगा ना, पीछे तो उसका बढ़ जाएगा
ना। निकालो स्वामी काल, निकालो काल, जघन्य का काल नारकियों में एक समय में नहीं बढ़ता है, जैसे निषेकों में बढ़ा था, स्थिति में बढ़ता है, स्थिति में तो बढ़ जाता है, परंतु यहाँ अनुभाग की बात है। एक जीव की अपेक्षा काल देखेंगे तो हमें क्लैरिटी होगी।
6 नंबर
मार्गणाओं में हम देख रहे थे, उत्कृष्ट 31 पर होगा कहीं, हाँ 31 पेज। देखो नारकियों में वहाँ 44 नंबर का पॉइंट
अंतर्मुखी,
नारकियों में मोहनीय कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त एक जीव की अपेक्षा बताया। तो एक जीव के लिए अंतर्मूर्त
असंख्या जीव,
तो हावली के असंख्यात विभाग प्रमाण जो जीव आएंगे तो उसमें पल्ले का असंख्यात भाग घटित होगा। स्थिति तो बढ़ जाती है, अनुभाग नहीं बढ़ता। अनुभाग जब बढ़कर बांधेगा तब, परंतु वो जगन्य भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। एक जीव के लिए अंतर्मूर्त है, और जगन्य अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है नारकियों में, ये तो सर्वदा पाया जाएगा। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सब पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय करना, अब पंचेंद्रिय तिर्यंचों में तो वो स्वयं बांधने वाले हैं, फिर भी एक जीव अगर बांधता है तो उसका अंतर्मूर्त काल रहेगा। तो असंख्यात जीव अगर निरंतर बांधते रहेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग घटित होगा। आप कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंचों में एक समय कैसे घटित होगा?
मरण की
अपेक्षा, मरण की अपेक्षा, या उसके साथ उसमें जन्मे है उसकी अपेक्षा। सामान्य देव जैसे अभी हमने नारकियों में घटित किया, मंजूबेन 82 पेज नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य का लगातार काल देख रहे हैं। जघन्य अनुभाग विभक्ति कर की किसी जीव ने तो उसका लगातार काल कैसे है? नारकियों में कैसे घटित किया हमने? असंगी में से एक जीव आया, जघन्य के साथ रहा, अधिक से अधिक कितना रह सकता है जघन्य के साथ? एक अंतर्मूर्त, उसका पूरा होते ही दूसरा आया, वो अंतर्मूर्त रहा, तीसरा आया अंतर्मूर्त रहा, ऐसे लगातार कितने आएंगे? तो असंख्यात आते हैं। एक के लिए अंतर्मूर्त, असंख्यात के लिए असंख्यात अंतर्मूर्त, जो पल्ले का असंख्यात भाग है। ऐसे और कहाँ कहाँ घटित होता है? तो पहली पृथ्वी में भी होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में। पंचेंद्रिय तिर्यंचों को ही क्यों लिया? पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य किसके होगा पहले ये नक्की करते हैं।
असंगिक होगा ना? असंगिक होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच असंगिक होगा। नहीं नहीं नहीं, जो एकेंद्रिय से आया हुआ जी,
जो हत समुत्पत्ति के एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय में जिसने सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्त, नहीं जिसने जघन्य किया था वो जगन्य के साथ पंचेंद्रिय में आया है, तो जगन्य में लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त मैक्सिमम।
जगन्य में लगातार पर यहाँ पे एक समय घटित होगा ना?
वो एक समय मिनिमम घटित होगा, मिनिमम, क्योंकि एक समय उसका जगन्य का बाकी है और उसमें आया है, यहाँ मरण की अपेक्षा नहीं लगेगी। और एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो असंख्यात जीवों के लिए पल्ले का असंख्यात होगा। सामान्य देवों में जैसे असंगी में से आए हुए लेना, भवनवासी अंतर में भी असंगी से आए हुए लेना है, सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त एक इंद्रियों में से उसमें आए हुए जीव लेना है, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर अप का एक पर्याप्त, बादर तेजस का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोदम को छोड़ा यहाँ पर, अर्थरस अपर्याप्तों में जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यंत वो न रह गया, पर्यंत जघन्य वाला भी न, जरा स्पष्ट करो क्या कहते हैं। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यंत जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है, वहाँ जघन्य किसके होता है?
तो जो सही समय दो बार श्रेणी से उत्तर कर सही करके है। अरे दूसरी सॉरी
अनंत आनंद की बरोबर, आप अच्छा, स्वर्ग की आप स्वर्ग की सोच रहे थे, अनंत अनुबंधी की विसंजना करने वाले, तो जघन्य कर लिया तो जघन्य में रहेंगे, हाँ अनलेस फिर वो मिथ्या तो मिल जाएंगे, परंतु ये तो सर्वदा ही पाए जाएंगे। असंख्यात है, प्रत्येक नरक में असंख्यात, हाँ बहुत ज्यादा है, प्रत्येक नरक में असंख्यात है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में तथा ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, इसी प्रकार इन्हें कैसे जघन्य और अजघन्य सर्वदा पाए जाएंगे, तो सामान्य तिर्यंचों में तो भले वो एकेंद्रिय में हो या मरकर कहीं अन्य गए हो, तो जघन्य वाले तो रहेंगे ही हमेशा, अजघन्य वाले भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि जघन्य करने वाले ही अनंत जीव है, उसी पर्याय में रहे या मरकर अन्यत्र जाए। तो इसलिए कहते सामान्य तिर्यंचों में तथा ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, ज्योतिषियों में कौन लेना जघन्य में विसंयोजना वाले, वो भी हमेशा पाए जाएंगे, और बाकी सौधर्म से लेकर ऊपर जो है उनके जघन्य किसके होगा? दो बार श्रेणी चढ़ के उतरे है, उपशम श्रेणी पर से और क्षपणा की है, उनके जघन्य अनुभाग है, तो जघन्य कर लिया अभी अजघन्य नहीं होगा, समय दृष्टि अनुभाग बढ़ के नहीं बांधेगा कभी। ना जिसने एक बार वो क्षपणा करके जघन्य कर दिया है, अभी उसके बढ़कर बांधेगा तो ही अजघन्य होगा, मनुष्य में आएगा तो मनुष्य का जघन्य दसवें गुणस्थान में कहलाएगा। अब वहां जो देवों की अपेक्षा जघन्य था वो अनुभाग तो बढ़ा नहीं, परंतु उससे भी हीन अनुभाग दसवें गुणस्थान में है, इसलिए उसको अजघन्य कहेंगे, ख्याल में है ना, वो अजघन्य नहीं होगा, यानी वो अनुभाग बढ़ेगा नहीं। हाँ वहां से बढ़कर नहीं बांधते, देवों में जो जघन्य हुआ था, इनका प्रश्न ऐसा है, देवों में तो जघन्य किया किसने, मनुष्य में से वो जघन्य जो कुछ है क्षपणा करके गया है, अब वो देवों के लिए इससे मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसके आगे कोई अन्य क्रिया रही नहीं उनके, तो देव में जब तक है तब तक देवों का जघन्य ही रहा, ऐसा जो मनुष्य में आया है तो ये तो अनुभाग को बढ़ाकर तो नहीं बांध रहा है, परंतु उस अनुभाग से हीन अनुभाग श्रेणी में हो जाएगा उसका, इसलिए उसको पहले जघन्य कह रहे थे, देवों की अपेक्षा मनुष्यों की अपेक्षा उसी को अजघन्य कहेंगे, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि उसने बढ़ाकर बांधा है, क्योंकि एक बार समय दृष्टि के तो जितना है उससे बढ़कर बनता ही नहीं, शुक्ल लेशा वाला हो, समय दृष्टि हो, ये संयत वगैरह सभी में है, उससे कम हो सकता है क्रिया विशेष के कारण, हाँ क्रिया के बिना है उतना रहेगा, मिथ्या दृष्टि में क्रिया के बिना उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट हो जाता है, और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट भगा बंद होता है, वो तो क्रिया ही नहीं, वहां उल्टी क्रिया चल रही संकलेश ज्यादा है। इसलिए यहाँ कहते हैं इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में मिला 82 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, तथा ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, सब एकेंद्रिय, सब पांचों स्थावर का है, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, यानी ये ऐसी मार्गणाएं हैं, इनमें जघन्य वाले भी और अजघन्य वाले भी हमेशा हो गए, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, शुक्ल के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंज्ञ और अनाहारकों में जाना चाहिए। विशेषार्थ, जो हतसमुत्पत्तिक कर्म वाले असंगी मरकर, यानी जिन्होंने अनुभाग को घटाया है, ऐसे असंगी जीव मरकर नरक में उत्पन्न होते हैं, उनके जघन्य अनुभाग होता है। यह संभव है कि इस अनुभाग का सद्भाव एक समय तक ही हो और निरंतर ऐसे जीव उत्पन्न हो और अंतर्मुहूर्त तक वही अनुभाग रखे, तो वहाँ जघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। एक क्या है? एक समय तक ही हो, एक बात। दूसरी बात, एक के बाद एक बार, एक के बाद निरंतर असंख्यात जीव उत्पन्न हो और हर एक के लिए अंतर्मुहूर्त तक रहे, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग होता है। इसलिए नरक में जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है।
जिसने दो बार उपक्रम से उतर कर जो साई किया है, वो जीव नियम से आनंद से ऊपर ही जन्म लेगा कि वो सौधर्म ईशान में से भी जन्म ले सकता है?
कहीं भी, सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक कहीं भी जन्म ले सकते हैं। आयु का बंध हुआ है ना पहले,
तो जघन्य समान ही होगा सौधर्म ईशान से सर्वार सिद्धि तक।
हाँ, वो जो जघन्य किया है वो समान होगा, क्योंकि उसी को जघन्य किया है ना हमने। हाँ। अपन उसमें जो मिनिमम पॉसिबल है उसको जघन्य के
नहीं फर्क होगा,
उनको
सौधर्म ईशान में जो
सौधर्म ईशान वालों का उसका इसमें समानता नहीं, पर इन सभी जीवों में जघन्य में जो जघन्य है उसको जघन्य कहेंगे हम। इनका ऐसा कहना है, अनुभाग जो सब घटाते हैं, दो बार उपशम श्रेणी में भी घटाया और क्षपणा में भी घटाया, तो जिन्होंने ये तीन ही चीजें की है, दो बार उपशम श्रेणी और क्षपणा, उन सब का एक समान अनुभाग होगा ये बात नहीं है,
नहीं,
पर उनमें जो मिनिमम पॉसिबल है ऐसा जीव वहाँ कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर गए जाने वाले ने ज्यादा घटाया है और ऐसा नहीं है। उसी के बात पूछ रहे ना, तो उसको हमने जघन्य में जघन्य ले लिया।
नहीं, जघन्य तो वही मैंने क्वेश्चन किया कि सौधर्म से सर्वार सिद्धि तक का जघन्य।
हाँ, जो जघन्य सर्वार सिद्धि वाले के है वैसा ही जघन्य सौधर्म को भी हो सकता है। हाँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। देखो, जैसे दूसरे नरक का जघन्य और सातवें नरक का जघन्य,
नहीं उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा।
हाँ, फर्क नहीं होगा, अनंत अनुबंधी की विषय योजना करते हैं, तो जितना मिनिमम पॉसिबल है उसी को हमने जघन्य नाम दिया है। वैसे वहां भी होगा जघन्य जो है वो जघन्य जघन्य में कोई अंतर नहीं है, वो नीचे के स्वर्ग वाला जघन्य अलग है और ऊपर के स्वर्ग वाला जघन्य अलग है, ये बात नहीं है, क्योंकि जघन्य करने का कार्य तो उसने मनुष्य में किया है और मनुष्य में करके वो अभी ऊपर गया है।
क्योंकि सह्यदेव जो मरकर जो ऊपर की स्वर्ग में उत्पन्न होता है और जिसने चौथे गुण स्थान से ऊपर गया ही नहीं और सपना कर दी,
सपना की बात ही नहीं है, दो बार उपशम श्रेणी की कंडीशन है अपनी, उसी को जघन्य का, केवल सपना की इसलिए जघन्य नहीं कहा है, सपना के पहले दो बार उपशम श्रेणी की कंडीशन डाली है, क्योंकि वहां भी अनुभाग कांडक होते हैं, दोनों बार श्रेणी चढ़ते समय। देखो, ये विशेषार्थ हम पढ़ रहे थे, चार लाइन हमने पढ़ी। इसलिए नरक में जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। यहाँ अजघन्य अनुभाग वालों का काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उन जघन्य वालों को छोड़े तो अजघन्य तो हमेशा ही है। प्रथम पृथ्वी के नारकी आदि अन्य जितनी मार्गणाएं मूल में गिनाई है उनमें यह काल अविकल बन जाता है, इसलिए उनकी प्ररूपणा सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। हमने देखा ना, पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय सामान्य देव भवनवासी सब में ऐसी प्ररूपणा होगी। द्वितीय आदि पृथ्वियों में अनंतानुबंधी की जिन्होंने विसंयोजना करके जघन्य अनुभव किया है, ऐसे जीव और अजगन्य अनुभाग वाले जीव सर्वदा पाए जाते, दोनों ही प्रकार के। अतः उनमें देखो, नरक में भी प्रत्येक नरक में अलग अलग, हम तो कहते हैं ना समय दृष्टि असंख्यात है, अरे परंतु केवल समय दृष्टि नहीं, विसंयोजना करने वाले भी असंख्यात है। कैसे हम वहां के कैसे परिणाम, कैसे कंडीशन, और वहां भी जीव अपना ऐसा पुरुषार्थ कर लेते हैं और हम संयोगों के लिए रोते बैठते हैं क्योंकि यहाँ तो सभी सुविधाएं है, शास्त्राभ्यास है, उपदेश देने वाले हैं, ग्रंथ जब चाहे पढ़ सकते हैं, भगवान की मूर्ति को देखते रहे तो भी विशुद्धि हो जाए, अपने परिणाम अंतर में चले जाए। तो हम नारकी जो करते वो हम यहाँ नहीं कर रहे। अतः उनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का काल सर्वदा कहा। सामान्य तिर्यंच आदि में जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है। ये सर्वदा वाला जो है, क्योंकि एकेंद्रियों में हमेशा ही जघन्य करने वाले हैं, अजघन्य वाले तो है ही है। अतः इनमें द्वितीय आदि नरकों के समान जानने की सूचना की है। समानता क्या है? वो सर्वदा है, इतनी ही समानता है, अन्य कोई समानता नहीं। उनका जघन्य और एकेंद्रियों का जघन्य समान नहीं है। किसका कम होगा? एकेंद्रिय का कम होगा। मनुष्य अपर्याप्तों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय। एक तो ये मार्गणा सांतर है और उसमें जघन्य के साथ उत्पन्न होने वाले जीव लेना है। एकेंद्रियों में जिन्होंने जघन्य किया है ऐसा जीव अपर्याप्त में आया और एक समय में जघन्य से अजघन्य हुआ, भले एक जीव आवे या अनेक जीव आवे, तो उसका जघन्य काल एक समय होगा और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अजघन्य का अंतर्मूर्त कैसे लेना है? जघन्य के साथ मनुष्य अपर्याप्त में आया है, अंतर्मूर्त तक जघन्य रखा उसने,
ये तो शांतर मारना की अपेक्षा हो जाएगा ना।
नहीं, पहले सुनो तो कोई जीव जघन्य के साथ आया है।
अच्छा,
जघन्य के साथ आया अंतर्मूर्त में अजघन्य की, और उसकी अंतर्मूर्त प्रमाण आगे शेष है अभी, तो वो अंतर्मूर्त जघन्य होगा। अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर नहीं, जघन्य काल। बात ख्याल में है? कुछ कंफ्यूजन है? दोबारा देखो, जघन्य काल एक समय कैसा? जघन्य के साथ इसमें एक या अनेक जीव आए हैं और उन्होंने अजघन्य कर दिया। मरण की तो बात नहीं है, क्योंकि क्षुद्र भव तो वहां बिताएगा ही जो जीव जन्मा है। एक बात होगी ना, एक समय हो गया नाना जीवों की अपेक्षा एक समय। अब नाना जीवों की अपेक्षा अजघन्य का जघन्य काल घटित करना है, तो नाना जीवों की अपेक्षा मिनिमम काल कितना है? कोई जीव एक साथ आए और एक साथ मरे और फिर अंतर पड़ा, पहले भी अंतर था बाद में भी, तो अंतर मुहूर्त उसके मिनिमम काल है क्षुद्र भव वाला, उसमें भी हमें और घटाना है। तो वो जीव ऐसे लेने कि जघन्य के साथ आए थे, अंतर्मूर्त के बाद अजघन्य हो गए, अब अंतर्मूर्त शेष रहा। तथा दोनों का उत्कृष्ट काल, यानी उत्कृष्ट का सॉरी जघन्य का भी और अजघन्य का भी उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग है। ये मनुष्य अपर्याप्त में लगातार नाना जीव रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल प्रमाण रहेंगे, क्योंकि एक के लिए अंतर्मूर्त और यहाँ आते हैं असंख्यात जीव। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी में जानना चाहिए, वहां भी जघन्य के साथ कोई वैकृत मिश्र में आया है। वैकृत मिश्र में जघन्य कौन सा लेना चाहिए? हाँ, अब यहाँ दो कंडीशंस है वैकृत मिश्र वाले के। आप कहते दो बार उपशम श्रेणी करके क्षपक क्षपणा की है, वो भी आता है वैकृत मिश्र में, और एक होता है असंगी में से आया है। तो हमें नक्की करना है इनमें से किसका काल, किसका अनुभाग जघन्य होगा।
असंगी में से आया।
असंगी में से आया हुआ। हाँ, कुछ फायदा नहीं उसने, एक इंद्रिय में भी जघन्य करे, असंगी में भी जघन्य करे, संगी हुए बिना तो वो वहां के जघन्य से तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं, संगी में आते ही वो तो अधिक बंद करेगा। आहार का योगियों में मौनीय कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से एक समय, क्योंकि मरण हो सकता है आहार का योग में, और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है, उसका लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त, लगातार संख्यात भी जीव उसमें आएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। आहारक मिश्र का योगियों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से भी अंतर्मूर्त है। आहारक का योग में हमने एक समय घटित किया था, आहारक मिश्र में वंस स्टार्ट्स, एक बार शुरू हुआ, अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, तो वो अंतर्मूर्त, और लगातार अनेक जीव आएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा, और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त। अपगत वेदियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य से काल एक समय है और उत्कृष्ट से संख्यात समय है। अपगत वेदी में जघन्य कब होता है? सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपगत वेदी होने पर उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट सॉरी अजघन्य का काल लेना है। अपगत वेदी में तो हमने उपशम श्रेणी भी लेना है, अजघन्य है ना, तो एक के बाद एक के लिए अंतर्मूर्त, एक के बाद जीव आए तो संख्यात हो गए तो भी अंतर्मूर्त घटित होगा। इसी प्रकार वो कषायी सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है अकषायी और यथाख्यात संयतों में जघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जघन्य का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। उपशम सम्य दृष्टियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त है। उपशम सम्यक दृष्टि में जघन्य किसके होगा? दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ा है, 11वें गुणस्थान में आते ही उसका जघन्य हो गया, अब वो वहां पर रहे या उतर कर नीचे तक आए तो भी उपशम सम्यक दृष्टि कहलाएगा। द्वितीय उपशम चल रहा है ना उसका, तो उसके जघन्य होगा, तो उसके लिए कहते हैं जघन्य से अंतर्मूर्त है। उपशम सम्य दृष्टियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त है। मरण की अपेक्षा भी यहाँ पर मरण अगर भी लेते हैं, आपका प्रश्न ख्याल में आया, मरण हुआ उसका किस में? 11वें गुणस्थान में होगा, एक समय में मरा, तो वो कौन सा समय दृष्टि हुआ? तो उपशम समय को मार्गणा उसकी चालू रही। देखो यहाँ फिर यहाँ लिखते हैं, अपगत वेदी में एक समय लिया, क्यों? अपगत वेदी में तो एक समय तो सूक्ष्म सांप्राय में घटित होगा, वहां तो एक समय घटित किया,
अभी वेदी हुआ और एक समय में मरण हो गया, तो एक समय घटित होगा,
जघन्य का घटित करना है ना। अपगत वेदियों में जघन्य किसके होता है? सूक्ष्म सांप्राय में, वहां घटित करना है। अपगत वेदी में अजघन्य घटित करना है तो एक समय घटित हो सकता है, बराबर। अब वैसी बात यहाँ लेना, देखो उपशम सम्यक दृष्टियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त है। यहाँ एक समय क्यों नहीं कहा?
वो तो उपशम तो
क्योंकि उपशम सम्यक्त्व में जघन्य किसके होता है, तो दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़कर जो ग्यारहवें में पहुंच गया उसका जघन्य हुआ। अब वो जीव एक समय में मरा तो भी उसका द्वितीय उपशम सम्यक तो देव में भी चल रहा है और अनुभाग बढ़ने का कोई कारण नहीं है। अंतर्मुहूर्त तक तो रहेगा ही, बाद में वो वेदक समय दृष्टि हो जाएगा। परंतु यदि हम वो मार्गणा अकषायी कहते हैं, यथाख्यात संयत कहते हैं, तो एक समय घटित होगा, उपशम समय तो में नहीं घटित होगा। जय बेन, देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा है। इसी नीचे से तीसरी लाइन, इसी प्रकार अकषायी सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। इस प्रकार ने कैसा कि जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट संख्यात समय और अजघन्य का भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मोड़। मरण की अपेक्षा मातु घटित हुआ था किसमें? अकषायी सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात में। फिर भी वहां भी अकषायी और यथाख्यात संयत में जघन्य का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताए क्योंकि वो एक अंतर्मूर्त वाला उसका गुणस्थान है। उपशम समय दृष्टियों में क्या कर रहे है कि जघन्य अनुभाग का काल जघन्य से भी अंतर्मूर्त है, एक समय नहीं कहा। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में मरण होकर भी वो देव हुआ, अकषायी का सकषायी हुआ, अपगत वेदी का सवेदी हो गया, परंतु उपशम सम्यक्त्व का उपशम समय दृष्टि ही रहा, उसकी मार्गणा नहीं बदली। देव में भी अपर्याप्त अवस्था में वो द्वितीय उपशम वाला है, फिर वहां से वो वेदक समय दृष्टि हो जाएगा, इसलिए एक समय घटित नहीं होगा। मरकर भी उपशम समय दृष्टि रहा, इसलिए एक अंतर्मूर्त। और सासादन समय दृष्टियों में, और यहां तो बात नाना जीवों की अपेक्षा हो रही है ना, एक जीव की अपेक्षा भी वो घटित होगा, यहां तो नाना जीवों की अपेक्षा घटित करें। और सासादन समय दृष्टियों में एक समय है तथा सासादन सम्यक दृष्टियों में जघन्य एक समय, क्योंकि सासादन का काल एक समय घटित हो सकता है। यहां भी दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे वाला जीव लेना जो सासादन में आया है, उसके लिए जघन्य एक समय घटित होगा तथा दोनों में उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। एक जीव के लिए छह अवली, तो जघन्य करके जो लगातार संख्या जीव आएंगे तो अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने वाले संख्या जीव है इसलिए। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, अजघन्य का जघन्य काल, उपशम सम्य दृष्टियों में अंतर्मूर्त, ये उपशम सम्यक्त का काल तो अंतर्मूर्त रहेगा ही, और सासादन समय दृष्टियों में एक समय है, ये गुणस्थान का काल। रेना बेन, कुछ ख्याल में आती बात? हाँ, उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यात विभाग है, एक जीव के लिए अंतर्मूर्त तो असंख्यात जीवों के लिए पल्ल्य का असंख्यात अभाव। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। अब सासादन में तो एक समय घटित हुआ था, यहाँ तो अंतर्मूर्त रहेगा ही एक जीव, तो अनेक जीव भी अंतर्मूर्त जघन्य काल, और उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यात विभाग। किंतु इतनी विशेषता है कि जघन्य अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी जघन्य से आने वाले जीव लिए यहाँ तो संख्यात ही होगे, ज्यादा नहीं होगे। विशेषार्थ पढ़ेंगे इसका। जिनके जगन्य अनुभाग के काल में एक समय शेष है, ऐसे जीवों के मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होने पर वहाँ जगन्य अनुभाग का एक समय काल उपलब्ध होता है। यानी वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक में से जगन्य के एक समय शेष रहा तब इसमें उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य अपर्याप्त में जगन्य अनुभाग के काल के सिवा शेष अंतर्मूर्त काल और जगन्य अनुभाग का जगन्य काल होता है। यानी यहाँ मनुष्य अपर्याप्त में जब उत्पन्न हुआ तो जगन्य का अंतर्मूर्त बाकी था, अंतर्मूर्त तक में जगन्य रहा, फिर अजगन्य हुआ, तो जो शेष उसकी लब्धि अपर्याप्त की आयु बाकी है वो उसका अजगन्य का जगन्य काल, अजगन्य का मिनिमम काल। तथा मनुष्य लब्धि अपर्याप्त जीव यदि निरंतर उत्पन्न हो तो पल्य का असंख्यातवा भाग काल उपलब्ध होता है। यानी कोई ना कोई जीव मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक में है, एक जीव आया तो अंतर्मूर्त तक रहेगा ही, तो वो उसका अंतर्मूर्त पूरे होते ही नेक्स्ट समय में दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो इसे पल्य के असंख्यातवे भाग काल तक ये मार्गणा बनी रहेगी। इतने काल तक इस मार्गणा में जघन्य और अजघन्य दोनों अनुभाग विभक्तियां संभव है, इसलिए इनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का क्रमशः जघन्य काल एक समय और अंतर्मूर्त जघन्य का एक समय, जघन्य का जघन्य एक समय और अजघन्य का जघन्य अंतर्मूर्त तथा दोनों का उत्कृष्ट काल पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। हाँ देखो, आपका कहना सही है, आप कहते हैं सासाधन में और सम्यक मिथ्यात्व में उन्होंने एक समय भी लिया जघन्य, और जघन्य का उत्कृष्ट काल सम्यक मिथ्यात्व के लिए भी और उसमें भी अंतर्मूर्त कहा। क्यों? क्योंकि जघन्य में आने वाले कौन है, तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हुए जीव लिए हैं, तो वो जीव ही संख्यात है, और वो जब नीचे आएंगे उसमें से भी कुछ ही जीव आएंगे, तो उनकी संख्या संख्यात होने से वहां अंतर्मूर्त घटित हो सकता है। यानी एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो संख्यात जीवों के लिए भी अंतर्मूर्त होगा।
उनका क्वेश्चन क्या था?
उनका क्वेश्चन नहीं था, वो तो एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा। कि यहाँ सासाधन में और सम्यक मिथ्यात्व में जघन्य में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का, उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल तो पल्ले का असंख्यात भाग है, परंतु जघन्य में कोई ना कोई जीव निरंतर जघन्य जघन्य करता रहे तो अंतर्मूर्त ही होता है। क्यों? उसके पीछे एक कंडीशन लगी, इसलिए उन्होंने केवल अपने विशेषार्थ में और जोड़ दिया है समझने के लिए। अच्छा, साथ में चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना, कोई प्रश्न पूछता है, कोई एक्सप्लेनेशन और देता है, तो क्लैरिटी बढ़ती है। अकेले पढ़ने बैठो तो ये तो कितना, तो जंप करते करते पढ़ते हैं, चलो होगा कुछ। मैं भी स्वयं अकेली पढ़ती हूँ, कभी 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 पढ़ने का मौका आता है, रोज टाइम भी नहीं मिलता, मगर यहाँ जो पढ़ती हूँ उसमें मेरी क्लैरिटी ज्यादा बढ़ती है। और हम भाग्यवान है कि सुनने वाले जिज्ञासु जीव है, ऐसा भी होता है ना, सुनाने वाले की बहुत इच्छा है और सामने वाला सुनना नहीं चाहता है। देखो, वैकिरेक मिश्र का योग भी सांतर मार्गणा है, और इसमें काल संबंधी प्ररूपणा मनुष्य अपर्याप्तकों के समान बन जाते हैं। अतः वैकिरेक मिश्र का योग वालों में मनुष्य अपर्याप्तकों के समान जानने की सूचना की है। उसमें भी जघन्य के साथ आया तो एक समय होगा,
वैकिरेक मिश्र में तो अंतर्मुक्त होगा,
जघन्य करके कोई उसमें आया है, असंगी में से आया है, वैकिरिक मिश्र का काल अंतर्मूर्त है। हाँ। आहार का योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः आरक काय योग वालों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। लगातार संख्यात जीव भी आएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। आहारक मिश्र काय योग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः आहारक मिश्र काय योग वालों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का दोनों प्रकार का काल अंतर्मूर्त कहा है। इसमें आने पर ना जघन्य का अजघन्य होता है ना अजघन्य का जघन्य होता है। क्या कहा? आहार कायोग में आने पर जिस अनुभाग के साथ आया है उतना ही अनुभाग रहता है, अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। निषेकों में तो देखा था एक एक निषेक तो गलता है, वहां तो एक एक समय से कम होता था, यहां तक कोई क्रिया ही नहीं होती। तो अनुभाग जितना जो जघन्य के साथ आया है वो जघन्य के साथ रहेगा, जो अजघन्य के साथ आया है वो अजघन्य रहेगा। अपगत वेद में जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय ओघ के समान घटित कर लेना चाहिए। ओघ के समान इसलिए कहा क्योंकि ये तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय है। इसलिए ओघ के समान कहा। तथा अपगत वेद का मोह सत्व की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। मोह सत्व की अपेक्षा यानी मोहिनी की सत्ता है ऐसा अपगत वेदी, कितने कम से कम काल कितने, क्योंकि हमको अजघन्य घटित करना है। जघन्य तो दसवें गुणस्थान में होता है और बाकी सब उसको छोड़कर सारे अजघन्य हैं। तो कहते हैं पहले में पहले अपगत वेदी का, जिन अपगत वेदी तो बारहवें में भी है, तेरहवें में भी है, चौदहवें में भी है, मोहिनी की सत्ता वाला अपगत वेदी चाहिए। तो मोहिनी की सत्ता वाले अपगत वेदी ग्यारहवें गुणस्थान तक हो गए। अपगत वेद होते ही एक समय में मरा, देव में उत्पन्न हुआ तो पुरुष वेद सहित जन्मा, तो इसलिए अपगत वेद के साथ एक समय रहा ना, तो वो अजघन्य था। उपशम श्रेणी में तो अजघन्य होगा, इसलिए क्या कहते देखो, अपगत वेद का मोह सत्व की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अपगत वेद में लगातार रहने का काल है अंतर्मूर्त। संख्यात जीव भी एक के बाद एक आएंगे तो भी अंतर्मूर्त। इसलिए अपगत वेदियों में मोहनीय के अजघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। ये बात ख्याल में आई अपगत वेदी की? जो सूक्ष्म सांप्राय में नहीं है बाकी सारे जो है अपगत वेदी जिनकी मोहिनी की सत्ता है वो कैसे है? अजघन्य वाले हैं। तो कोई जीव अभी श्रेणी में था ही नहीं और एक जीव आया है अपगत वेदी हुआ, वो भले क्षपक में हो या उपशम में हो,
अंतर्मूर्त रहेगा।
हाँ, तो क्षपक में तो अपगत वेदी का अंतर्मूर्त रहेगा, परंतु हमें उसको नहीं लेना है, हमें एक समय नाना जीवों की अपेक्षा घटित करना है। तो क्षपक श्रेणी में एक भी जीव नहीं था, अपगत वेदी के बाद एक भी जीव नहीं था। उपशम श्रेणी में एक या अधिक जीव आए, अपगत वेदी हुए, एक समय में मरकर देव में चले गए। तो अपगत वेदी में अजघन्य का एक समय घटित हुआ और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अपगत वेदी में मरा नहीं और लगातार कोई ना कोई जीव आता रहा, फिर भी संख्यात जीव आएंगे तो अंतर्मूर्त घटित होगा। अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयतों में अपगत वेदियों के समान काल घटित कर लेना चाहिए, पर अकषाय और यथाख्यात संयत मोह सत्व की अपेक्षा उपशांत कषाय गुणस्थान वाले होते हैं। यहाँ तो हमें मोहिनी की सत्ता वाले ही लेना है, इसलिए अकषाय और यथाख्यात संयत हम बारहवें वाले को तेरहवें वाले को नहीं लेते हैं, ग्यारहवें वाले को लेते हैं। इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय न प्राप्त होकर अंतर्मूर्त प्राप्त होता है, क्योंकि एक जीव आता है तो अंतर्मूर्त लगातार तो रहेगा उत्कृष्ट काल उसका। अतः वह उक्त प्रमाण कहा है, उपशम संयुक्तों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और सासादन का जघन्य काल एक समय है, अतः इनमें जघन्य अनुभाग वालों का जघन्य काल क्रम से अंतर्मूर्त और एक समय कहा। तथा स्वामित्व को देखते हुए इन दोनों मार्गणाओं में जघन्य अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है, क्योंकि जघन्य करने वाले लगातार संख्यात जीव होंगे उपशम में, क्योंकि वो द्वितीय उपशम की बात हमने देखी थी, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। सासादन में भी हमने देखा था कि जघन्य के साथ सासादन में आए हैं, तो ये कंडीशन है, दो बार उपशम से नीचे चढ़ के उतरा हुआ, इसलिए ऐसे जीव संख्यात है। एक जीव छह आवली तक बढ़ा हम कहते, तो संख्यात जीव भी अंतर्मूर्त तक ही रहेंगे। अतः वो उक्त प्रमाण कहा। तथा इन मार्गणाओं के नीचे से चौथी लाइन चल रही है 84 पर, इन मार्गणाओं के जघन्य और उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है, ये लगातार आने वाले जीवों की अपेक्षा ये बात बताई। सम्यक मिथ्या दृष्टि के जघन्य और उत्कृष्ट काल को व स्वामी संबंधी विशेषता को ध्यान में रखकर वहां भी जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा। अभी हमने पूरा ऊपर पढ़ा था ना इसी पेज पर, जघन्य और अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग, मात्र इनमें भी जघन्य अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ये जघन्य के लिए पल्ले का असंख्यात भाग नहीं हो सकता है, तो जघन्य अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त उपशम समय दृष्टियों के समान घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अब अंतरानुगम कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन भाई,
नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो वज्जानम, नमो लोहे सुभद्रावणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम।